हरे कृष्णा।
तो
आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। और हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं परम पूजनीय भक्ति रसामृत स्वामी महाराज। हरि बोल। महाराज जी का बहुत लंबे अरसे के बाद इस पंजाबी मंदिर में आना हुआ और महाराज लगभग पिछले 25 वर्षों से अधिक प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में सेवा कर रहे हैं पूरे उत्साह और समर्पण के साथ। और बहुत सी विशेष विशेष प्रोजेक्ट्स में महाराज जी का योगदान रहा है, विशेषकर यूथ प्रीचिंग में। पूरे भारत के जितने भी मुख्य मुख्य विख्यात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं महाराज उनमें प्रचार करते हैं। और विशेषकर 1996 में प्रभुपाद सेंटेनियल ईयर में महाराज पूरे उन्होंने भारत में भ्रमण किया और एक नेशनल लेवल पे डिबेट ऑर्गेनाइज किया सभी युवाओं के बीच में। और भारत और नेपाल को मिला के 250 शहरों में घूमे और 5000 से अधिक कॉलेजों में उसने भाग लिया। और हम सब जानते हैं कि महाराज विख्यात हैं और कई लाखों लोगों को प्रेरणा के सूत्र हैं अपने मधुर भक्ति में प्रवचनों के लिए, अपने आदर्श वैष्णव व्यवहार के लिए सबके बहुत प्रिय हैं। और इनके निर्देशन में बेलगांव में एक बहुत सुंदर भक्तों का समुदाय विकसित हुआ है। और साथ में ही बेलगांव से आगे लगभग एक गोकुल धाम जो एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी महाराज डेवलप कर रहे हैं उसमें 450 एकड़ की भूमि के ऊपर। और हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज यहाँ पे नोएडा में आए थे, इनका कोई सेमिनार था और महाराज ने हम पे कृपा की, यहाँ पे आज उपस्थित हुए और अपने सुंदर हमें आशीर्वचन देने के लिए। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि महाराज के संग का पूरा लाभ उठाएँ। केवल भारत में नहीं, महाराज पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, रशिया में, अमेरिका में, यूरोप में। और महाराज बहुभाषी हैं, हिंदी बहुत सुंदर बोलते हैं, इंग्लिश बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं, बंगला जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं। तो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और साथ ही साथ में हम वेलकम करना चाहेंगे परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज जी का भी। महाराज का भी भागवत सप्ताह चल रहा है यहाँ पे रमेश नगर में, कल से प्रारंभ हुआ है और शाम को 4 से 7 वहाँ जाके भी महाराज के संग का लाभ उठाइए। और भक्तों से निवेदन है कि यहाँ पे स्पेस खाली पड़ा है पीछे, तो क्योंकि आगे बाद में काफ़ी भक्त लोग और आएंगे तो बाहर बैठना पड़ेगा, तो पीछे से यहाँ पे भी आ सकते हैं और नज़दीक, और सभी भक्त लोग और आगे आगे आ सकते हैं ताकि जो बाद में आने वाले भक्त उनको कोई दिक्कत ना हो। और अपने मोबाइल फ़ोन को कृपया करके स्विच ऑफ कर दीजिए और साइलेंट मोड पर रखिए और पूरे ध्यान से महाराज के संग का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा।
रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि मैं यहाँ 5 साल के बाद आ रहा हूँ। धमकी समझिए, याद समझिए, लेकिन रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के निमंत्रण को कभी मैं इनकार नहीं कर सकता। और आप सबके बीच में यहाँ आके पुनः कृष्ण कथा करने का मौका मिला है, आप सबका संग प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंद 4वां अध्याय। दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। श्लोक संख्या 66। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा मयि मुझको निर्बद्ध हृदयाः हृदय में दृढ़ता से संयुक्त साधवः शुद्ध भक्तगण समदर्शनाः समदर्शी वशे नियंत्रण में कुर्वन्ति कर लेते हैं माम मुझको भक्त्या भक्ति से सत्स्त्रियः सती स्त्रियां सत्पतिम अपने सदाचारी पति को यथा जिस तरह है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्त गण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। तात्पर्य इस श्लोक का समदर्शनाह शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त वास्तव में सबके प्रति समभाव रखता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। शुद्ध भक्त होने पर ही विश्व बंधुत्व संभव है, पंडिताः समदर्शिनः। शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को तथा भगवान की स्थिति को जानता है और जीव तथा भगवान के पारस्परिक संबंध को जानता है। इस तरह है, उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है और वह स्वतः मुक्त हो जाता है, ब्रह्म भूतः। इसलिए वह हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है। वह सारे जीवों के सुख तथा दुख को समझ सकता है। वह समझता है कि जो उसके लिए सुख है वही दूसरों के लिए सुख है और जो उसके लिए दुख है वही दूसरों के लिए दुख है। इस तरह वह हरेक के प्रति कारुणिक होता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। लोग सांसारिक क्लेशों से ग्रस्त हैं क्योंकि वे भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है कि वह अज्ञानी जनता को कृष्ण भावनामृत का बोध कराए। अनुवाद को दोहराइएगा। जिस तरह है सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्त गण
मुझको पूरी तरह है
अपने वश में कर लेते हैं।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत में। यहाँ पर सुंदर प्रसंग ये नहीं है कि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया, ये अध्याय का शीर्षक है। सुंदर बात यह है कि इस अपमान के कारण दुर्वासा मुनि बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंस गए, और उस कष्ट से राहत पाने के लिए यहाँ वहाँ घूमे, सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर लिया उन्होंने। अंततः भगवान नारायण के शरण में आए, परंतु भगवान नारायण ने भी हाथ ऊपर कर दिए। भगवान ने कहा कि तुमने मेरे महान भक्त का अपमान किया है, और इसकी जो क्षमा याचना है तुम्हें उनके पास जाके करनी चाहिए, मेरे पास नहीं। जिनका अपमान किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, उनके पास ही जाके क्षमा याचना की जाती है। तो इस मौके का फायदा उठाकर भगवान ने स्वयं भगवान या उनके भक्तों का गुणगान करना शुरू कर दिया। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजः, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जनप्रियः। शुरुआत से ही भगवान ने घोषणा कर दी कि मेरे भक्त कितने महान हैं। भगवान ने जो दुर्वासा मुनि को उपदेश दिए, दो विषय थे। एक कि वो किस तरह से भक्तों के वश में रहते हैं, भक्तों के नियंत्रण में रहते हैं, और दूसरी बात कि भक्त उनके लिए कितने प्रिय होते हैं। तो शुरुआत से ही भगवान घोषणा कर रहे हैं, अहम भक्त पराधीनः, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विजः, कि हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तात्विक दृष्टि से, तत्व के दृष्टि से तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। ये तो भागवत का सिद्धांत है, पहले श्लोक से ही ये घोषणा की गई है कि भगवान स्वराट हैं, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। परंतु यहाँ पर उसी बात का खंडन कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं ही अस्वतंत्र इव, कि मैं स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? साधु भी ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय है। मैं स्वतंत्र इसलिए नहीं हूं कि मैं मेरे भक्तों के नियंत्रण में सदा रहता हूं। मेरे भक्तों की बात तो दूर रही, मेरे भक्तों के जो भक्त है वो भी मेरे लिए इतने प्रिय हैं कि मैं उनके वशीभूत भी हो जाता हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, बहुत सारे तत्व हैं जिनको हमें जानना है। भगवत तत्व, भगवान कौन है? वैष्णव तत्व, वैष्णव कौन है? धाम तत्व, धाम क्या चीज है? नाम तत्व, भगवान का नाम क्या है? लीला तत्व, गुण तत्व, सृष्टि तत्व, रस तत्व, बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनको श्रीमद् भागवत के द्वारा हमें जानना है। यहाँ पे वैष्णव तत्व की व्याख्या स्वयं भगवान कर रहे हैं, और कितनी सुंदर बातें वो कह रहे हैं। भगवान यहां घोषणा कर रहे हैं कि उनको अपने दिव्य आनंद में भी रमण करने में अच्छा नहीं लगता,
उनके जो ऐश्वर्य हैं, जो संपूर्ण हैं, उनमें भी कोई आनंद नहीं आता यदि कोई भक्त उनके साथ ना हो। मत भक्तैर साधुभिर बिना, भक्तों के बिना भगवान को किसी भी चीज में आनंद नहीं आता है। और आगे चल के भगवान ये भी बताते हैं, ये दारागार पुत्राप्त प्राण वित्तम इमं परम, ये सारे चीजें हैं, पत्नी पत्नी पुत्र रिश्तेदार इत्यादि जितने भी हैं, हित्वा माम शरणम याता है, क्योंकि मेरे भक्तों ने इन सबको त्याग कर मेरा शरण ग्रहण किया है। कथम ताम, किस तरह से मैं इनको त्याग सकता हूं। कथम ताम त्यक्तुम उत्सहे, मैं कभी भी मेरे इस तरह के भक्तों को त्याग नहीं सकता। और उसके बाद इस श्लोक का उच्चारण भगवान कहते हैं, और भक्तों का गुणगान करते करते पारिवारिक जीवन कैसे चलना चाहिए उसके बारे में दो शब्द कह देते हैं। तो चलिए, जब भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं तो सुखी पारिवारिक जीवन कैसे होना चाहिए इसके बारे में भी दो शब्द कहे जाएं। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। तो भक्ति का रहस्य क्या है? हमें जो भक्त है भगवान को इस तरह से वशीभूत कर देता है कि जैसे एक सत स्त्री, सती स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, डांट के नहीं, ऊंचे स्वर में बात करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, बल्कि सेवा से, प्रेममयी सेवा से। जब सती स्त्री पति की सेवा इस तरह से करती है तो सेवा के माध्यम से पति को वश में कर लेती है। देखिए, पत्नियों को भी बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, है ना? किस तरह से आप अपने पति को वश में करना चाहते हैं ना, लेकिन झगड़े से नहीं होगा, सेवा के भाव से होगा। और बेचारे पति लोग होते हैं, वो सोचते हैं हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। गलत है, घर में शक्तिशाली कौन है सब जानते हैं, परंतु शक्तिशाली किस तरह से बनते हैं ये स्वयं भगवान यहां बता रहे हैं। बस इस चीज का पालन यदि घर में हो, हर घर में हो जाता तो हर घर में सुख और शांति हो जाती, परंतु यहां ऐसे नहीं होता है, इसलिए सब जगह अशांति फैली हुई है, हर घर में युद्ध चल रहे हैं। तो भक्ति का भी ये सिद्धांत है। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के वशीभूत हूं। यद्यपि भगवान तो सर्वेश्वरेश्वर हैं, समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, परम नियंता हैं, परंतु नियंत्रण करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। जो वास्तव में नियंता है उन्हें नियंत्रण करना अच्छा नहीं लगता, परंतु जो लोग नियंता नहीं है अर्थात बद्ध जीव, उनको नियंत्रण करना बड़ा अच्छा लगता है, और इसलिए गड़बड़ हो जाता है। देखिए कैसी विडंबना है, जो नियंता है वो नियंत्रण नहीं करना चाहते, जो नियंता नहीं है वो नियंत्रण करना चाहते हैं, इसलिए मामला सब उल्टा हो जाता है। तो भगवान फिर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के नियंत्रण में रहूं, और भगवान को इसमें बड़ा आनंद आता है। जो बद्ध जीव होता है नियंता न होने के बावजूद जब वो नियंत्रण करना चाहता है तो ये केवल उसके मिथ्या अहंकार का एक प्रदर्शन है, जिससे कि उसे बहुत कष्ट होता है। और दूसरी ओर भगवान जब अपने नियंत्रण करने की प्रवृत्ति को त्याग कर भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो उनको परम आनंद का अनुभव मिलता है। देखिए सूक्ष्म बातें हैं बहुत, यदि भगवान भी अपने भक्तों के वश में होना चाहते हैं तो हम जो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं हमें भी भक्तों के वशीभूत होने में क्या समस्या है? हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में अपने भक्तों के हाथों में कठपुतली या खिलौना बनना बहुत पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब गोपियां तालियां बजाती थी, कीर्तन करती थी, तो श्री कृष्ण नृत्य करते थे। कृष्ण नाचो नाचो नाचो, नाचते थे कृष्ण। और गोपियां गीत गाती थी तो कृष्ण बड़े आनंद से अपने बाल लीला में नृत्य करते थे, और इसमें कृष्ण को बड़ा आनंद आता था। देखिए, साधारण जगत में कोई यदि कहे कि वो जैसे नचा रहे हैं आप नाच रहे हो, तो ये कहना कहने का मतलब है वो आपको अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो आप दूसरे व्यक्ति के वश में हो, वो जैसे कह रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हो। परंतु भगवान को कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर। गोपियां कह रही है नाचो, वो नाचने लगते हैं। गोपियां कहते हैं गाओ, गाने लगते हैं। और गोपियों की बातों को सुन के उनको बहुत अच्छा लगता है। यहां तक कि जब माता यशोदा की डांट सुनते हैं और गोपियों के कटु वचन सुनते हैं, तो श्री कृष्ण को इतना आनंद आता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरुष सूक्त आदि अन्य जो भी स्तुतियां होती हैं भगवान की या वैदिक मंत्र होते हैं, उनको सुन के जितना आनंद भगवान कृष्ण को आता है, उससे कहीं अधिक आनंद भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा की डांट सुनने से आता है और गोपियों के कटु वचन सुनने से आता है। इसलिए रस तत्व है, भगवत तत्व है, ये सब जानना बहुत मुश्किल है। यदि हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तो भगवान की लीलाओं में केवल हमें विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है कि भगवान तो परम सत्य हैं और फिर भी भक्तों के हाथों में कठपुतली बन गए हैं? कुंती महारानी भी भ्रमित हो गई थी, इसलिए श्रीमद् भागवत में वो प्रार्थना करती है और कहती कि ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कृष्ण, कि आप परम सत्य हैं और दूसरी ओर आप माता यशोदा के द्वारा उखल से बंध गए। आप तो सभी को बांध देते हैं अपने माया शक्ति के द्वारा, और अभी माता यशोदा के द्वारा आप बंध गए। तो माता यशोदा समझ, कुंती महारानी समझ नहीं पा रही थी कैसे हो सकता है। यह रस, रस तत्व, लीला तत्व। तो वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण के 64 गुणों का उल्लेख किया है, संक्षिप्त रूप में वर्णन भी किया है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत दिव्य गुण हैं, उनमें से रूप गोस्वामी ने केवल ऐसे 64 गुण चुने हैं, और उनमें से 40वां गुण है प्रेम वश्यः। प्रेम वश्यः का मतलब है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के वश में आ जाते हैं। और उधर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जब ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के वश में आते हैं, हमें जानना चाहिए कि वो अपने भक्तों के वश में न आकर भक्तों के हृदय में जो उनकी प्रेम भावना है उसके वश में आ जाते हैं। जब भक्तों का गुणगान किया जाता है शास्त्रों में, तो हमें समझना चाहिए कि भक्तों के गुणगान के द्वारा वास्तव में भक्ति का गुणगान हो रहा है। भक्ति इतनी महान है कि वो भगवान को वश में कर सकती है, और क्योंकि भगवान के भक्त भक्ति के आश्रय हैं, इसलिए वो भगवान को वश में कर सकते हैं। देखिए, हमारे बीच में वैष्णव महाराज बैठे हैं, उनका संन्यास नाम क्या है? भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी है ना। वैष्णव कौन होता है? जो भक्ति का आश्रय है। तो क्योंकि भक्ति के आश्रय हैं वैष्णव, जो भक्त होते हैं, इसलिए वैष्णव भगवान को वश में कर लेते हैं। एक वैष्णव में और अवैष्णव में अंतर क्या होता है? कि वैष्णव के हृदय में भक्ति होता है और इसलिए उस प्रेम के द्वारा वो भक्त भगवान को वश में कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे भगवान श्री कृष्ण को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण है, आत्मनिर्भर है, और किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होते हुए भी बड़े आनंद से अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस सेवा के माध्यम से वो प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो भगवान, प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान हमारी सेवा नहीं चाहते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा है, फिर क्या चाहते हैं भगवान? भगवान हमारे सेवा भाव को चाहते हैं, हमारे भक्ति भाव को चाहते हैं। सेवा एक माध्यम मात्र है हमारे भक्ति भाव को, हमारे प्रेम को भगवान तक पहुंचाने के लिए। तो जब प्रेम से कोई व्यक्ति सेवा करता है तो भगवान उस प्रेम को, उस सेवा को बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। और इस संदर्भ में प्रेमवश इस गुण के संदर्भ में रूप गोस्वामी दो उदाहरण देते हैं। एक है सुदामा विप्र का और दूसरा है दामोदर लीला में माता यशोदा का। जब सुदामा विप्र द्वारका आए तो श्री कृष्ण ने किस प्रकार से उनकी सेवा की? रुक्मिणी देवी के साथ सुदामा विप्र के चरण कमलों को धोया, उनकी आरती उतारी, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनका सत्कार किया। श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने याद किया कि किस तरह से सुदामा के साथ उनके सख्य भाव का आदान प्रदान हुआ करता था, जबकि वो अवंतीपुर में अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहा करते थे। तो श्री कृष्ण उस प्रेम के भाव से वशीभूत हो गए, इसलिए वो अपने भक्त की सेवा करने लगे, उनके चरणों को धोने लगे। उसी तरह से माता यशोदा ने जब श्री कृष्ण को बांध लिया उखल से रस्सी के द्वारा, तो ऐसे बताया जाता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में माता यशोदा ने नहीं बांधा, नहीं रस्सी के द्वारा श्री कृष्ण बांधे गए, वास्तव में श्री कृष्ण बांधे गए माता यशोदा के हृदय में जो प्रेम था उसके द्वारा। इस प्रकार से श्री कृष्ण प्रेम वश हैं, भक्तों के प्रेम में वो बंध जाते हैं। भक्ति के वैसे 6 लक्षण हैं, ऐसे भी रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। उनमें से एक जो चौथा लक्षण है वो है सुदुर्लभा। सुदुर्लभा का मतलब है कि भक्ति अतीव दुर्लभ है। किस प्रकार की भक्ति की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी? भाव भक्ति की। भाव भक्ति इतना दुर्लभ क्यों है? इसके लिए 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये है कि भाव की अवस्था, भाव भक्ति की अवस्था केवल भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से ही प्राप्त हो सकता है। योगाभ्यास से नहीं हो सकता, वर्णाश्रम धर्म के पालन से नहीं हो सकता, तपस्या से नहीं हो सकता, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने से नहीं हो सकता, परंतु केवल सेवा से उत्पन्न हो सकता है, भक्ति से हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई भगवान की भक्ति कर भी रहा हो परंतु यदि उसके हृदय में
आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति, फिर भी भक्ति करते हुए भी उसे भाव की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान भाव भक्ति आसानी से नहीं देते हैं, ये बहुत दुर्लभ है। और तीसरी बात है, यदि कोई भक्ति कर रहा है भगवान कृष्ण की और बहुत आसक्त भी है, फिर भी भगवान हिचकिचाते हैं भक्ति ये भाव भक्ति प्रदान करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान ऐसे भाव भक्ति प्रदान करते हैं किसी भक्त को, तो उस भाव भक्ति के अर्थात उस भक्त के वो वशीभूत हो जाते हैं। भगवान उस भक्त के हवाले आ जाते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं भगवान। विक्रीणते स्वम आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। विक्रीणते का मतलब है बेच डालते हैं भगवान अपने आप को, और उस भक्त के हाथ में एक कठपुतली या खिलौना बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान को बहुत सोचना पड़ता है किसी को भाव भक्ति देने के पहले, कि मैं दे दूंगा भाव भक्ति, फिर इसके हाथ में मैं कठपुतली बन जाऊंगा, तो मुझे बहुत सोच समझ कर देना चाहिए किस व्यक्ति को देनी है नहीं देनी है। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप किसी दुकान में जाएंगे कोई चीज खरीदने के लिए, आप यदि मूल्य दे देंगे तो दुकानदार बड़े खुशी से वो चीज आपको दे देगा, लेकिन आप उसका सारा दुकान भी खरीदना चाहें, आपके पास मूल्य हो तो वो बेच देगा आपको। परंतु यदि आप कहें आपके दुकान का कोई सामान मुझे नहीं चाहिए, आपका दुकान मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपको खरीद लेना है, नहीं, मैं बिकाऊ वस्तु नहीं हूं, मैं थोड़ी अपने आप को बेच सकता हूं, यदि चाहिए तो सामान यहां का कुछ ले लीजिए, अपने आप को मैं नहीं बेच सकता। तो इसी तरह से जो भी भगवान के पास आते हैं कोई भौतिक चीज मांगने के लिए, तो भगवान के दुकान में बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत सी चीजें हैं। क्या चाहिए आपको? पृथ्वी लोक में कोई ऊंचा पद चाहिए, मंत्री पद चाहिए आपको, बहुत पंजाबी बाग में बड़ा मकान चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, अखबार में फोटो छपने, ये चाहिए, भगवान आसानी से दे दें, शायद ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। कहीं किसी के मन में विचार ना आ जाए कि चलो इस बहाने भगवान कृष्ण के पास जाएं, तो भगवान आसानी से दे देते हैं। भगवान का बड़ा सुपरमार्केट है, बहुत सी चीजें हैं भगवान के पास देने के लिए। तो जो उनके पास इन चीजों की कामना करके जाते हैं भगवान दे देते हैं। कोई कहता नहीं नहीं पृथ्वी चीज के पृथ्वी लोक की चीजों से मुझे कोई आकर्षण नहीं, मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी, ठीक है स्वर्ग लोक ले लो। कोई कहता मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, जनलोक चाहिए, तपलोक चाहिए, सत्यलोक चाहिए, ठीक है भाई ले लो। मुक्ति चाहिए, ले लो मुक्ति भी ले लो, निराकार ब्रह्म में लीन होना है भाई ले लो। भक्ति चाहिए, नहीं बाबा नहीं 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 नहीं। फिर भगवान थोड़े सावधान हो जाते, ये क्या मांग रहे हैं, भक्ति मांग रहे हैं। फिर भगवान बहुत सोचते हैं भक्ति देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर भगवान बहुत परीक्षा करते हैं भक्तों की, वो भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति देने के पहले। अन्य चीजों के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, स्वर्ग चाहिए मुक्ति चाहिए दे देते हैं। भक्ति जब मांगते हैं तो भगवान सोचते हैं इसकी खूब परीक्षा लूंगा मैं। इसलिए भक्तों के जीवन में भी बहुत कठिनाइयां आती हैं। कई बार लोग ऐसे कहते हैं आप लोग भक्ति करते हो, आपके जीवन में भी ऐसे कष्ट क्यों आते हैं? भाई भगवान परीक्षा लेते हैं ना, वो देखना चाहते हैं कि हम कोई काबिल ऐसे योग्य व्यक्ति हैं क्या, क्योंकि भगवान अपने आप को जब बेचने वाले हैं हमारे लिए हमारे सामने, तो हमें उनको भी बहुत सोचना पड़ता है कि इनकी योग्यता क्या है। तो इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं, कष्ट देते हैं, कष्टों में हमारा व्यवहार कैसे रहता है, क्या हमारी श्रद्धा टूट जाती है, क्या हम भगवान को दोषी ठहराते हैं कि आपने हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों दिए? हम आपकी भक्ति कर रहे हैं और सुख देने के बजाय आपने हमारे जीवन में दुख भेज दिया, इसलिए हम अब से आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो सच्चे भक्त ऐसे नहीं कहते हैं, परंतु भगवान परीक्षा देने के लिए भक्तों को ऐसे कष्ट दे देते हैं। और फिर जो महान भक्त होते हैं, जैसे ब्रजवासी गण हैं या प्रहलाद महाराज हैं, पांडव हैं, इनके जीवन में कितने सारे कष्ट आ गए, और इन कष्टों के द्वारा भगवान हम सब साधारण भक्तों को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश क्या है कि देखो इनके जीवन में कितने सारे कष्ट आए, फिर भी वो डावाडोल नहीं हुए, भक्ति को उन्होंने त्यागा नहीं, मेरे शरण को छोड़कर कहीं दूसरे जगह नहीं गए। तो जब ये महान भक्त कष्टों में, कठिनाइयों में आते हैं, तो उनका जिस प्रकार से व्यवहार होता है, उनकी भक्ति किस प्रकार से रहती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। फिर हम भी सोचने लगते हैं कि नहीं, हमारे छोटे मोटे कष्टों से हमें क्यों विचलित होना चाहिए। देखो प्रहलाद के जीवन में कितना कष्ट आया था, उन्होंने भगवान का स्मरण करना बंद नहीं किया। तो इस तरह से भक्ति देने के पहले साधारण भक्ति दे देते हैं, लेकिन भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति नहीं। फिर बहुत ज्यादा सोचते हैं, और इसलिए जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही आसक्त हो गया मुझसे, तब भगवान सोचना शुरू करते हैं कि मैं इसे भाव भक्ति प्रदान करूं या नहीं करूं। फिर भी देखते हैं कि मैं तब प्रदान करूंगा जब इसे किसी शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हुई है। जब शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तब जाकर मैं इसे ये भाव भक्ति या प्रेम भक्ति प्रदान कर लूंगा। इसलिए भाव भक्ति ये सुदुर्लभा है, बहुत ही दुर्लभ है। साथ साथ भक्ति का छठा लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षिणी। श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, कृष्ण शब्द का ही अर्थ ये है, सर्व आकर्षक। परंतु भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक है श्रीमती राधा रानी, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। और इसलिए श्रीमती राधा रानी भी श्री कृष्ण को अपने वश में कर लेती हैं। कृष्ण है मदन मोहन, मदन या कामदेव को भी मोहित करने वाले। कामदेव ने सारे सृष्टि को मोहित कर लिया है, परंतु कामदेव को या मदन को श्री कृष्ण मोहित कर देते हैं। परंतु मदन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी मोहित कर देती हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। इसके लिए तीन उदाहरण यहां देते हैं श्रील रूप गोस्वामी। एक, जब उद्धव को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे होते हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, उद्धव गीता में, तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, न साधयति माम योगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो, यथा भक्तिर ममोर्जिता। वो कहते हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से मेरे तीव्र भक्ति करने से भक्त मुझे वश में कर लेता है, वैसे अन्य किसी भी रास्ते से संभव नहीं है। न तपस्या से, न त्याग से, न स्वाध्याय से, न वर्णाश्रम धर्म के द्वारा, न सांख्य योग के द्वारा, न योगाभ्यास के द्वारा नहीं हो सकता है। ऊर्जिता भक्ति, ऊर्जिता भक्ति का मतलब है ऐसी भक्ति जो बहुत शक्तिशाली है, जो बहुत ही विकसित हो चुकी है, जो भावपूर्ण है,
साधारण भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, ये भावपूर्ण भक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसे भावपूर्ण विकसित भक्ति भगवान को वश में कर लेती है। दूसरा उदाहरण देते हैं भगवान, महाराज परीक्षित, क्षमा, महाराज युधिष्ठिर जब नारद मुनि के पास में थे तो उनके मन में शायद ऐसे लगा होगा कि प्रह्लाद महाराज कितने महान भक्त हैं। सातवें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी प्रह्लाद महाराज का खूब गुणगान करते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने भी बहुत सुना था प्रह्लाद महाराज के बारे में, तो इतने प्रभावित हुए प्रह्लाद के गुणों को सुन के कि युधिष्ठिर महाराज के हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ कि अरे प्रह्लाद महाराज के ऐसे दिव्य गुण हैं और हम सब जो हैं पांडव गण हैं, मैं युधिष्ठिर हूं, हम तो कुछ भी नहीं है। प्रह्लाद महाराज के सामने तो हम घास के तिनके के बराबर भी नहीं है। तो नारद मुनि समझ गए कि परीक्षित महाराज की भावना ऐसी है, तो उन्होंने सांत्वना दे दी युधिष्ठिर महाराज को, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसे मत सोचिए युधिष्ठिर महाराज कि आप कोई साधारण भक्त हैं। प्रह्लाद महाराज अवश्य बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु आप भी कोई कम नहीं हैं, आप भी प्रह्लाद महाराज के बराबर हैं, बल्कि उनसे श्रेष्ठ भी हैं। क्यों ऐसे? यूयम निनोके बत भूरी भागा, कि आप सब पांडव जो हो ना, भूरी भागा, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। अब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि लोकम पुनाना मुनयोभियन्ति, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े मुनिगण हैं जो सारे विश्व भर में भ्रमण करते हैं, विश्व भर को पावन करते हैं, वो बार बार आपके घर में, आपके निवास स्थान में, आपके महलों में आते हैं। क्यों आते हैं? येषां गृहान् अवसतीति साक्षात्, क्योंकि आपके घर में, आपके महलों में स्वयं श्री कृष्ण बार बार आते हैं, और बल्कि यहीं पे निवास करते हैं, लंबे समय के लिए आपके घर में रहते हैं। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लिंगम, एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं और वो आपके घर में आके निवास करते हैं, और उनका दर्शन करने के लिए फिर बड़े बड़े संत जो ऋषि मुनि हैं वो भी आ जाते हैं। तो देखिए, प्रह्लाद महाराज के सामने भगवान नरसिंहदेव आए, परंतु आए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और चले गए, लेकिन भगवान आपके घर में आते हैं और रहते हैं, आके तुरंत चले नहीं जाते। नरसिंहदेव भगवान तो आए, हिरण्यकश्यप का वध करके चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण आपके घर में आए हैं और रहते हैं। इसलिए तो सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि आपके महलों में, आपके घर में आते हैं। देखिए आप कितने भाग्यशाली हैं। वैसे ऐसा ही एक प्रसंग परीक्षित महाराज के साथ हुआ। शुकदेव गोस्वामी ने देखा कि शायद परीक्षित महाराज को ऐसे लग रहा है कि कुरुवंशी के लोग जो हैं वो इतने भाग्यशाली नहीं हैं। क्यों? अब देखिए, महाराज प्रियव्रत के वंश में भगवान ने अवतार लिया ऋषभदेव के रूप में, उधर महाराज उत्तानपाद के वंश में, उत्तानपाद ध्रुव महाराज के पिता थे ना, तो महाराज उत्तानपाद के वंश में कौन आए? पृथु महाराज ने अपना जन्म लिया, वो भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। रघु महाराज के वंश में रामचंद्र भगवान प्रकट हुए, यदु महाराज के वंश में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो शुकदेव गोस्वामी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज परीक्षित को लगे कि ऐसे कितने बड़े बड़े वंश हुए हैं, महाराज प्रियव्रत का वंश, महाराज उत्तानपाद का वंश, महाराज यदु का वंश, महाराज रघु का वंश, इन सब में भगवान स्वयं प्रकट हुए, लेकिन हमारे वंश में, कुरु वंश में भगवान कभी प्रकट नहीं हुए। इसलिए कुरुवंशी जो है वो भाग्यशाली नहीं है, कम से कम उतना भाग्यशाली नहीं है जितने कि ये अन्य वंशों के लोग हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उनको बताना चाहते थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि देखो, हालांकि भगवान श्री कृष्ण आपके वंश में जन्म प्रकट नहीं हुए, फिर भी वो आपके सब कुछ है। वो आपके घर में थे, आपके दास बने, पांडवों के वो दास बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए, वो आप ही के आराध्य देव हैं, आप उनके बहुत प्रिय हो, वो आप ही के गुरु हैं, आपके मित्र हैं, आपके सब कुछ हैं, बल्कि आपका दूत बन के वो कौरवों के पास गए, अर्जुन के सारथी बन के उनकी सेवा की, भक्त जो है आप सब पांडवों के वो सेवक बन गए। कितनी बड़ी बात है, अन्य वंशों में केवल भगवान प्रकट हुए, परंतु भगवान आपके जो वंशज है पांडव हैं, उनके सेवक बन गए, उनके दास बन गए। तो देखो आप कितने भाग्यशाली हो। इस तरह से भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने बतलाया कि कैसे श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के वश में आ गए थे, पांडवों के सेवक बन गए थे। केवल किसी वंश में प्रकट होना यह भी बड़ी बात होती है, लेकिन इससे अधिक बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण पांडवों के सेवक बन गए थे, उनके नियंत्रण में आ गए थे। तो यह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उनका स्वभाव है। वो चाहते हैं कि सदैव मैं अपने भक्तों के वश में रहूं, क्योंकि देखिए वश में रहना किसी के, इसमें ज्यादा आनंद आता है। जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, नेतृत्व की भावना जो है ना, वो भी आवश्यक है संसार में, लेकिन उसमें केवल अहंकार का थोड़ा पोषण होता है, मिथ्या अहंकार का। परंतु सच्चा आनंद तब आता है जब हम किसी दूसरे के वश में जाते हैं। ये योग्य व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति के नहीं। किसी बड़े भक्त के वश में रहते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। कृष्ण भी करते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार बताया करते थे कि इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री थे, तो जब एक बार कोई व्यक्ति उनके दफ्तर में जाना चाहता था तो उनको बाहर बिठाया गया। वो व्यस्त हैं प्रधानमंत्री साहब, व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर बैठिए। तो बैठे रहे, लेकिन समय बीतता गया, उनको बीतता गया और उनको अंदर बुलाया नहीं गया। तो आखिर बेचैन होकर वो अंदर चले गए कमरे में, प्रधानमंत्री के कमरे में, और क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, अपने पैरों में घुटनों पे चल रहे हैं, और उनको जो छोटा पोता है, बच्चा है, वो उनके पीठ पे बैठा हुआ है और चाबुक चला रहा है, चलो चलो गाड़ी, ऐ आगे चलो आगे चलो। और प्रधानमंत्री साहब को बड़ा आनंद आ रहा है। उस समय इंग्लैंड इतना शक्तिशाली राज्य था कि ऐसे कहावत थी वहां पे उस समय कि अंग्रेज राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता। सारे पृथ्वी भर में फैला हुआ था, तो कहीं ना कहीं तो सूर्योदय हो ही रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को किस चीज में आनंद आ रहा है, जिसने सारे दुनिया को वश में कर लिया, उसे अपने छोटे पोते के वश में आना बहुत, उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो देखिए ये आनंद के सूक्ष्म बातें हैं। तो कैसे व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, कैसे सच्चे आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए, इन सब का संकेत यहाँ पे श्रीमद् भागवत में दिया गया है। तो भगवान के स्वभाव को जानकर हमें भी उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। हमें भी वैष्णवों के संग में बड़े प्रेम से, बड़े आदर से वैष्णवों के वशीभूत होकर रहने का प्रयास करना चाहिए। फिर हम सुखी रहेंगे और इस जीवन का अंत जब हो जाएगा तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है आपके? हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ, हालांकि 5 साल बाद आया हूँ, लेकिन यहाँ की जानकारी रहती है, बहुत सारे भक्त मिलते रहते हैं, खबर देते हैं कि कितने अच्छे ढंग से आपका भक्त समाज प्रगति कर रहा है, और ये सब खबरें सुन के बहुत आनंद आता है। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और आपके साथ में जितने भी भक्त हैं, आप सब इतने अच्छे ढंग से सहयोग से सेवा कर रहे हैं, मिलजुल कर। बहुत से अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कार्यक्रम हैं आपकी, उनके बारे में सुनकर भी बहुत अच्छा लगा है। इसी तरह से कृपया आप आगे बढ़ते जाइए, और पंजाबी पाक को ही नहीं, सारे दिल्ली को आप कृष्ण भावना भावित कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न टीका कुछ वैष्णव महाराज को आप बोलना चाहेंगे, कुछ दो शब्द? आप महाराज के नाम का तात्पर्य समझ गए ना? हाँ जी, माइक है क्या कोई पीछे? अब बोलेंगे कुछ महाराज? माइक माइक आ गया
महाराज, नाम तो आप ही दिए थे।
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने दिए थे
आपका सजेशन।
भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के सामने हमेशा हम हार जाते हैं, कभी नहीं। प्रयास बहुत किया है तर्क करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। हरे कृष्णा।
जैसे भगवान की स्वभाव है भक्तों के नियंत्रण में रहते हैं, जैसे आप जैसे वरिष्ठ भक्तों का भी यही स्वभाव है।
हरे
कनिष्ठ भक्त।
हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, प्रश्न पूछिए आप। एक मिनट, माइक आएगी तब माइक दे दीजिए जरा।
थैंक यू सो मच महाराज फॉर द नाइस लेक्चर। महाराज आपने मेंशन किया कि जैसे भगवान को भक्त के नियंत्रण में होने के लिए उनके प्रति आसक्ति ज़रूरी है, तो मेरा प्रश्न था कि हम मतलब भौतिक चीज़ों के प्रति तो हमारी आसक्ति बहुत आसानी से हो जाती है, भौतिक चीज़ें भौतिक लोग हम बहुत ईजिली वी फॉल इन लव, लेकिन कृष्ण से आसक्ति होने में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं?
इसके पीछे कारण है कृष्ण। कृष्ण सर्व आकर्षक है, इतने आकर्षक हैं, इतने आकर्षक हैं कि ये बड़ा चमत्कार की है कि हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? जब कृष्ण सर्व आकर्षक हैं और हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, एक ही व्यक्ति इस काबिल है कि हमें श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होने से रोके, और वो है कृष्ण। और किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है। तो कृष्ण की ताकत क्या है? माया शक्ति। ये माया इतनी प्रबल है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने से वो रोक देती है, अन्यथा और कोई और किसी की ये क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो अभी हम आसक्त हो गए माया से, आसक्ति हमें स्थानांतरित करनी है, परिवर्तित करना है कृष्ण की ओर। कैसे करें? उनसे हम संग करें जिनके प्रति, जिनके हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति है, या कम से कम जो आसक्ति उत्पन्न कराना चाहते हैं अपने हृदय में।
ऐसे भक्तों का संग जितना हम करेंगे और ऐसे भक्तों के संग में जितना हम श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उतनी ही हमारी आसक्ति उनके प्रति भी बढ़ जाएगी। और कोई प्रश्न? हाँ जी। जब आनंद आता है तो संभलें कैसे? संभालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आनंद आए ना पहले। ये सच्चा आनंद आना चाहिए, ये कोई आसान बात नहीं है। ये यूं ही ऐसे आनंद नहीं आ जाता है। हाँ, ये आनंद इस संसार का आनंद नहीं है। कभी कभी लोग बहुत भावुक भी हो जाते हैं, भावुकता के कारण बड़े आंसू आने लगते हैं, वो आंसू ठीक नहीं है। तो आनंद सच्चा आनंद होना चाहिए, सांद्रानंद विशेष आत्मा, वो आनंद है। तो वो आनंद आए तब हम बात करेंगे, संभलेंगे कैसे। अभी जब कष्ट आते हैं उनको कैसे झेलें, बस ये अभी समस्या है। और कैसे कष्टों के बीच में भी रहते हुए भगवान को भूले नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण को बढ़ाने का प्रयास करते रहें, यह समस्या हमारे सामने है ना। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी ने हाथ ऊपर किया? हाँ जी।
बहुत सुंदर लेक्चर था, थैंक यू सो मच। प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति में क्या फर्क है?
भाव भक्ति अंकुर है, कली, और प्रेमा भक्ति खिला हुआ फूल है। तो प्रेमा भक्ति का ये प्राथमिक स्तर है भाव भक्ति। हाँ जी बोलिए। प्रश्न ये है कि भक्तों के वश में रह के सेवा करना ये अच्छा लगता है, परंतु केवल शुरुआत में। बाद में धीरे धीरे स्वतंत्र भाव विकसित होने लगता है और फिर अन्य भक्तों के नीचे सेवा करने के लिए इतना मन नहीं करता। क्यों है ये? ये भी परीक्षा है भगवान की, हमारे अहंकार की परीक्षा, कि हम उनके भक्तों के हवाले रह के सेवा करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो हमें क्या लगने लगता है, मैं भी कुछ हूँ, है ना, होता है कि नहीं ऐसे, मैं भी कुछ हूँ। जब ऐसे लगने लगता है ना, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ। ये जब भावना आ जाती है हमारे मन में, तो इससे सावधान रह के हमें अपने आप को आध्यात्मिक बुद्धि से समझाना चाहिए कि मैं कौन हूं। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास है। गोपी भर्तु अर्थात गोपियों के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। गोपी भर्तु पद कमलयोर, तो श्री कृष्ण के पद कमल में दास दासानु दास, तो हमारा परिचय यही है कि मैं कौन हूं, मैं श्री कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास हूं। तो अपने आप को समझाते रहना चाहिए। मन हमें कष्ट देगा, अहंकार हमें कष्ट देगा, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि से हमें मन का दमन कर लेना चाहिए, मन को समझा देना चाहिए कि नहीं, वास्तव में मैं इन सब का दास हूं। केवल वरिष्ठ भक्तों का दास नहीं हूं, वो तो हूं ही, लेकिन जो नए नए भक्त हैं ना, उनका भी मैं दास हूं। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अब वरिष्ठ बन गया, अब आदेश देने का समय मेरा आ गया, मेरा समय अब आ गया। जब मैं नया था, सबके आदेश सुनता था, अब मेरी बारी,
अब मैं सबको आदेश सुनाता रहूंगा, भाई ये करो ये करो वो, नहीं। अंत तक हमेशा सनातन रूप से हम दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। इसलिए इन चीजों के बारे में श्रवण करना इतना आवश्यक होता है। श्रवण से क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक बुद्धि को पोषण मिलता है, और आध्यात्मिक बुद्धि जब शक्तिशाली हो जाती है तब मन और अहंकार को वो वश में कर सकती है। जो सही है हमारे लिए, जो उपयुक्त है, जो उचित है, लाभदायक है, फिर हम चीजों को करते हैं। ठीक है, और कोई बात है? हाँ,
बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत ही मधुर और बहुत ही शिक्षाप्रद प्रवचन था आपका। मेरे दो प्रश्न हैं। आपने बोला कि सेवा एक माध्यम है अपने प्रेम भाव को भगवान को देने के लिए, और जब सेवा शुरू करते हैं तो हो सकता है इस भाव से शुरू करें, लेकिन सेवा के दौरान सेवा के इतने बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं कि उस तरफ आकर्षण चला जाता है और सेवा के मुख्य उद्देश्य से हम विचलित हो जाते हैं। तो क्या प्रिकॉशंस लिए जाएँ कि हम सेवा के भाव के प्रति हमेशा फोकस रहें? और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि भगवान को ज़्यादा आनंद आता है हालांकि वो पूर्ण स्वतंत्र है अपने भक्तों के वश में होने के, तो फिर जब कोई भाव भक्ति पाना चाहता है तो भगवान उसको देते क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का तो आनंद और बढ़ेगा उसके वश में आके।
दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दे देते हैं। तो भगवान भाव भक्ति आसानी से क्यों नहीं देते हैं जिस व्यक्ति के पास आसक्ति हो भी? क्योंकि भगवान हिचकिचाते हैं ना, क्योंकि भाव भक्ति एक बार मैंने दे दी तो उस भाव भक्ति के वश में मैं आ जाऊंगा, तो मुझे उस भक्त के मुझे बेच डालना पड़ेगा अपने आप को, तो मैं उसके हाथ में खिलौना बन जाऊंगा, तो मैं पूरी तरह से उसके नियंत्रण में रहूंगा, इसलिए मैं बहुत परीक्षा लूंगा उसकी। जब वो सही तरह से योग्य हो जाएगा तब जाकर मैं भाव भक्ति प्रदान करूंगा, क्योंकि बाद में जाकर मुझे उसकी सेवा करनी है ना? जैसे हम भी परीक्षा लेते हैं ना, किसकी सेवा करें किसकी सेवा नहीं करें, तो भगवान भी ऐसे परीक्षा लेते हैं, और फिर जब व्यक्ति की योग्यता हो जाती है फिर वो भाव भक्ति प्रदान कर देते हैं। पहला प्रश्न था कि जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते बहुत सी ऐसी और भी चीज़ें आ जाती हैं जो भक्ति के विरुद्ध होती हैं और उनमें हम रमण करने लगते हैं, तो इनसे कैसे बचना चाहिए? इसी विषय पर चर्चा कल शाम को नोएडा में राधा गोविंद मंदिर में हो रही थी। आप में से कितने भक्तों ने भक्ति लता बीज या भक्ति लता का प्रसंग पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है ये, जिसमें चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं कि जैसे जैसे हम साधन भक्ति करते हैं और श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति लता बीज का सिंचन करते हैं, वैसे वैसे जो अन्य अभिलाषाओं के बीज भी हमारे हृदय में अनादिकाल से पड़े हुए रहते हैं, वो भी धीरे धीरे से पौधे के रूप में प्रकट होने लगते हैं, फलित होते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा की इच्छा, भोग की इच्छा इत्यादि। तो इसका उत्तर ये है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति करते हुए प्रतिष्ठा की इच्छा आ रही है, पूजा की इच्छा आ रही है, कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा आ रही है, तो हमें उनको इन इच्छाओं को ही जड़ सहित उखाड़ देना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे एक माली को सावधान रहना चाहिए कि जब वो देखता है कि पौधे के साथ साथ उपशाखाएं भी बहुत सी आ रही हैं और ये उपशाखाएं भी उसी पानी को पी लेती हैं जो जमीन में हम देते हैं, मिट्टी में देते हैं, और फिर जो मूल पौधा है उसे पानी नहीं मिलता, ये सारी उपशाखाएं हैं ये पानी खींच लेती हैं, तो उन उपशाखाओं को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये अन्य अभिलाषाओं के जो पौधे हैं, ये जब हृदय में बढ़ने लगते हैं, ये आशाएं उभर आती हैं हृदय में, तो उनको तुरंत उसी समय काट देना चाहिए।
इसलिए भक्त को चाहिए कि वो बहुत सावधान रहे, सतर्क रहे, कि जैसे जैसे इच्छाएं आए बस काट दें। जैसे भक्ति में इस विषय पे भी चर्चा हम कल कर रहे थे कि पद किसी न किसी को तो स्वीकार करना पड़ता है, तरह तरह के पद होते हैं, कोई विभाग के प्रमुख हो जाते हैं, कोई कुछ कोई कुछ, तो ये पद स्वीकार करना आवश्यक है, नहीं तो सेवा कैसे होगी। परंतु पद स्वीकार करने के पीछे ये धोखा भी है, खतरा है कि कहीं हम पद से आसक्त ना हो जाएं, हमें ऐसा ना लगे कि मुझे पद चाहिए ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए समाज में, भक्तों के समाज में। तो इन चीजों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अंतिम प्रश्न है कोई? हाँ जी।
धन्यवाद महाराज। महाराज आपने बीच में बताया कि भगवान असली नियंता है, लेकिन वो नियंत्र करना नहीं चाहते। हम लोग नियंत्रण नहीं है, फिर भी हम लोग नियंत्र करना चाहते हैं, तो ये तो हमारा स्वाभाविक है। जिनके पास जो नहीं है वही चाहता है
लेकिन कृष्ण के पास है ना सब कुछ, कृष्ण के पास सब कुछ है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि नियंत्रण में रहने से ज्यादा आनंद आता है, इसके बजाय कि हम नियंत्रण करें। तो जो व्यक्ति आनंद के खोज में है उसे इस तथ्य को अच्छी भली भांति जान लेना चाहिए, है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गॉड प्रेमानंदे।
परम पूजनीय भक्ति गोस्वामी स्वामी महाराज की। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, और महाराज से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे जो विजिट है, पंचवर्षीय योजना ना रख के वार्षिक योजना कम से कम कम से कम साल में एक या दो बारी महाराज अवश्य आए, हम अपना आशीर्वचन दें। हम लोग बहुत ललायित रहते हैं आपके मुखारविंद से सुनने के लिए। से निवेदन है, जब भी आपको मौका मिले, कम से कम वर्ष में कितने भक्त लोग चाहेंगे कि महाराज अपने विजिट्स को बढ़ाएं। हरि बोल, हरि बोल। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हिताय गौर प्रेमानंदे। और कल सुबह भी हमारे ऊपर ये अमृत की वर्षा होगी, हमारे बीच में उपस्थित होंगे कल इस ग्रेस गौरांग प्रभु, और आज रात को भी हमें भक्तों का संग मिलेगा बहुत सुंदर ढंग से शिला प्रभुपाद की कृपा से। प्रभुपाद जी की शिष्या हर ग्रेस मंदाकिनी माता जी आ रही हैं शाम को 8 बजे, तो उनका प्रवचन होगा। तो बहुत ही दुर्लभ संघ है, जैसे महाराज बता रहे थे भक्ति भी दुर्लभ है, भक्तों का उन्नत भक्तों का संघ भी बहुत दुर्लभ है, तो संघ का पूरा लाभ उठाएं आज रात को शाम को 8 बजे और कल सुबह 9 बजे। हरे